संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है समाचार परिक्रमा। मैं हूं महबूब खान। 10 जुलाई 2020 के इस साप्ताहिक बुलेटिन में शामिल हैं। सभी को जल व स्वच्छता की सुलभता के लिए शुरू हुई एक नई व्यवस्था। कोविड 19 महामारी के बीच आपराधिक समूह लगे हैं धोखाधड़ी व नकली सामान बेचने में, सावधान रहने की चेतावनी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति नजरिए में लाना होगा बदलाव, कहना है यूएन विशेषज्ञों का। और कोविड 19 पर अपडेट के साथ साथ होंगे कुछ अन्य समाचार भी। हम आपको याद दिला दें कि विश्व परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप अपने मोबाइल फोन पर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है यूएन न्यूज रीडर। अब समाचार विस्तार से। वर्ष 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता की सुलभता सुनिश्चित करने के इरादे से गुरुवार को एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क फॉर SDG 6 नामक इस प्रणाली का उद्देश्य टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा को हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाना है और इसे 30 से ज़्यादा यूएन संस्थाओं और 40 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने विकसित किया है। टिकाऊ विकास एजेंडा के छठे लक्ष्य में सभी के लिए जल और साफ सफाई की उपलब्धता व टिकाऊ प्रबंधन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिससे अनेक यूएन एजेंसियों का कामकाज जुड़ा हुआ है। यूएन प्रमुख ने वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों के तहत कार्रवाई के दशक के लिए संगठित होने की उनकी पुकार के जवाब में ग्लोबल एक्सेलरेशन फ्रेमवर्क शुरू होते देखकर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस फ्रेमवर्क में ऐसे समाधान पेश किए गए हैं जिनके जरिए देशों को दक्ष और समन्वित समर्थन प्रदान किया जाएगा, ताकि सभी के लिए जल और साफ सफाई की वैश्विक उपलब्धता व टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित हो सके। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा कि लगभग अन्य सभी 16 टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पाने में जल की अहम भूमिका है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ता कायम करने में जरूरी है और शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास के लिए यूएन प्रयासों की बुनियाद को मजबूती देता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर जल की आपूर्ति मौजूदा समय में दोहरे खतरों का सामना कर रही है। बढ़ती मांग व दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अन्य कारणों से जल स्रोतों का क्षरण। ऐसे में टिकाऊ विकास के छठे लक्ष्य की दिशा में प्रगति पटरी से उतर गई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि दुनिया में 2 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए पीने का सुरक्षित जल उपलब्ध नहीं है और 4 अरब से ज़्यादा लोग साफ सफाई के अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसस ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ तैयारी और जवाबी कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल बनाने की घोषणा की है। यूएन एजेंसी साथ ही एक वैज्ञानिक विवरण तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही जारी करके कोरोना वायरस के फैलाव के संभावित स्रोतों पर नई जानकारी साझा की जाएगी। एक रिपोर्ट के साथ सचिन गौड़।
इस अंतर्राष्ट्रीय पैनल की अध्यक्षता साझा रूप से न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री और यूएन विकास कार्यक्रम की पूर्व प्रमुख हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलिन जॉनसन सर्लीफ करेंगी। इस वर्ष मई महीने में 73वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली के दौरान सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कोविड-19 के अनुभवों और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से लिए गए सबक की स्वतंत्र और व्यापक समीक्षा कराए जाने का आह्वान किया गया था। यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस।
In most of the world, the virus is not under control. It's getting worse.
अधिकांश दुनिया में वायरस काबू में नहीं है, हालात और बदतर हो रहे हैं। अब तक 1,18,00,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, 5,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और महामारी के फैलने की रफ्तार अब भी तेज हो रही है। पिछले 6 हफ्तों में कुल संक्रमणों की संख्या 2 गुनी हो गई है। महानिदेशक गेब्रियसिस के शब्द। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वैश्विक महामारी के फैलाव के तरीकों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल्द ही एक अपडेट जारी किया जाएगा, जिसमें हवा के जरिए वायरस के संभावित फैलाव के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। हाल ही में 200 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने एक खुले पत्र में यूएन स्वास्थ्य एजेंसी से कोरोना वायरस के हवा के जरिए फैलाव पर अपनी सिफारिशों में जरूरी बदलाव करने का आग्रह किया था। यूएन एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव के संभावित स्रोतों का निरंतर अध्ययन किया जा रहा है और इनमें हवा के जरिए, एरोसोल ड्रॉप्स, मां से बच्चे को और पशुओं से मनुष्य को संक्रमण के जोखिम की शिनाख्त की जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र के एक ताज़ा अध्ययन में पाया गया है कि दुनिया भर में कोविड 19 महामारी का मुकाबला करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की बढ़ी मांग के बीच धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं और नकली व खराब गुणवत्ता वाला सामान बेचने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। ये रिपोर्ट बुधवार को प्रकाशित की गई है। मादक पदार्थों और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय UNODC की कार्यकारी निदेशक गाडा वॉली का कहना है कि आपराधिक तत्व कोविड 19 महामारी से उत्पन्न स्थिति का गैर वाजिब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य और जिंदगियां खतरे में पड़ रही हैं। ये तत्व लोगों के डर व चिंताओं और निजी सुरक्षा उपकरणों व दवाओं की बढ़ती मांग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में लगे हैं। इस अध्ययन रिपोर्ट के निष्कर्ष पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस के अनगिनत अन्य प्रभावों के अलावा इस महामारी ने इन उत्पादों के उत्पादन और बिक्री के लिए बनाए गए नियामक व अन्य कानूनी ढांचों में मौजूद कमियों को उजागर कर दिया है। इस शोध अध्ययन में पाया गया है कि आपराधिक गुट कोरोना वायरस से जुड़ी अनिश्चितताओं और देशों की राष्ट्रीय नियम कानून प्रणालियों में मौजूद खामियों दोनों का इस्तेमाल या शोषण अपने फायदे के लिए करने में लगे हैं। यूएन एजेंसी के मुखिया ने कहा कि देशों की सीमाओं के दायरों से परे सक्रिय आपराधिक समूह देशों की नियामक और कानूनी प्रणालियों में मौजूद खामियों का फायदा अपने हित में उठाकर खराब व नकली चिकित्सा उत्पाद बेचने में लगे हैं। नकली या खराब चिकित्सा उपकरण बेचने के कारण लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है, क्योंकि ये उपकरण बीमारी का सही इलाज नहीं कर सकते और दवाओं के असर को भी कम करने की स्थिति पैदा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ ने सदस्य देशों, नागरिक समाज, मनोवैज्ञानिक संगठनों और विश्व स्वास्थ्य संगठन से आग्रह किया है कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के नज़रिए में बदलाव लाना होगा। विशेष रिपोर्टर डेनिस पूरस ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के मौजूदा मॉडल में दवाओं पर निर्भरता और मानसिक स्वास्थ्य मुश्किलों का सामना कर रहे लोगों को खतरनाक करार दिए जाने या उनकी मर्जी के बिना ही उनका इलाज किए जाने पर ज़्यादा जोर है, जिससे अलग हटना होगा। ज़्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर विशेष रिपोर्टर डेनियस पूरस ने मानवाधिकार परिषद में एक नई रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कोविड 19 ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में मौजूदा यथास्थिति की विफलताओं को और भी ज्यादा गहरा बना दिया है। डेनियस पूरस ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना स्वागत योग्य है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूएन विशेषज्ञ के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य के मामले में पुरातन, विक्षिप्त या बुरा जैसे ठप्पों या तरीकों से बाहर निकलना होगा। इन तरीकों को ज्यादातर मेडिकल नजरिए से जरूरी समझा जाता है और मरीजों की मर्जी शामिल किए बिना ही उनका उपचार किया जाता है। विशेष रिपोर्टर पूरस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मौजूदा ढांचे में बायोमेडिकल मॉडल का दबदबा है, जिससे मेडिकल तरीकों और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे लोगों को अस्पतालों में भर्ती किए जाने पर जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया संक्रमण जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं में मरीजों को दवाएं देना जरूरी होता है, लेकिन मनोत्तेजक दवाओं के फायदों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिनके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मनोत्तेजक दवाओं की भूमिका को समझने में हुई प्रगति सराहनीय है, लेकिन यह भी माना जाना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य की हालत को समझने के लिए फिलहाल जैविक संकेतक उपलब्ध नहीं है। इसलिए अभी सरलता से नहीं बताया जा सकता कि किन मायनों में मनोतेजक दवाएं असरदार होती हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट, दाएश, अलकायदा, नवनाजी और श्वेत वर्चस्ववादी समूहों सहित अन्य आतंकवादी गुट वैश्विक महामारी कोविड 19 से उपजे संकट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे रोका जाना होगा। सोमवार को उन्होंने आतंकवाद के उभरते नए रूपों, جیسے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے غلط استعمال، سائبر حملوں اور جیوک آتنکواد کے خطرے کے پرتی آگاہ کرتے ہوئے جوابی کارروائی کے لیے 5 اہم کھیتروں میں کارروائی کا خاکہ بھی پیش کیا ہے۔ زیادہ جانکاری کے ساتھ سچن گوڑ۔
یو این پرمکھ نے سوموار کو آتنکواد نیرودھک سپتاہ کے ورچوئل روپ سے آیوجت آرمبھک ستر کو سمبودھت کیا۔ اس کی تھیم ویشوک مہاماری کے سندربھ میں رننیتک اور ویوہارک چنوتیاں رکھی گئی تھی۔ مہا سچیو گٹریش نے کہا کہ آتنکواد پر COVID-19 کے اثر کی سمیکشا کر پانا ابھی جلد بازی ہوگی، لیکن کچھ باتیں اسپشٹ دکھائی دے رہی ہیں۔
ISIL, Al-Qaeda, their regional affiliates, as well as neo-Nazis, white supremacists and other hate groups,
اسلامک اسٹیٹ، القاعدہ اور اس کے کھیتریہ گٹ، نو ناتسی اور شویت ورچسو وادی سموہ سہت کئی انیہ گٹ وبھاجنوں، وبھلتاؤں اور استھانیہ سمسیاؤں کا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا پریاس کر رہے ہیں۔ یو این پرمکھ انتونیو گٹریش کے شبد، انہوں نے کہا کہ ویشوک مہاماری نے آتنکواد کے ابھرتے نئے روپوں جیسے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے غلط استعمال، سائبر حملوں اور جیوک آتنکواد کے خطرے کے پرتی بھی سچیت کیا ہے۔ بہوپکشواد کے ذریعے آتنکواد کا کارگر ڈھنگ سے مقابلہ کرنے کے لیے 5 مہتوپورن کھیتروں پر دھیان کیندرت کرنے کی پکار لگائی گئی ہے۔ راشٹریہ، کھیتریہ اور ویشوک استر پر آتنکواد نرودھک کھمتاؤں میں نویش، آتنکواد کے خطروں کے بدلتے روپوں کی نرنتر نگرانی اور ابھینو جوابی کاروائی پر زور، آتنکواد کے خلاف کاروائی میں لینگک ضرورتوں کا خیال اور مانوادھکاروں کا سنرکشن، آتنکوادی گٹوں دوارا پھیلائی جانے والی دھارناؤں و کپول کتھاؤں کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سمگر کاروائی، اور COVID-19 سے اپجے سرکشا ماحول میں انوبھووں سے سبق لینے کے لیے جانکاری ساجھا کرنے کی مضبوط پرکریا۔
سنگل یوز یعنی ایک بار استعمال ہونے والی پلاسٹک اور اس کے دش پربھاووں سے پریاورن کو بھاری نقصان پہنچتا ہے۔ سنیکت راشٹر پریاورن کارکرم یو این ای پی کی ایک پہل پلاسٹک پردوشن پر روک لگانے کے ارادے سے دنیا کے انیک دیشوں میں یوواؤں کو اس کے خطروں کے پرتی جاگروک بنانے پر کیندرت ہے۔ اس مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے سکولوں، سمودایوں اور ویوسایوں کو پلاسٹک کے استعمال پر نربھرتا گھٹانے کے لیے پروتساہت کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں کیندریہ پردوشن نینترن بورڈ کے مطابق ہر دن دیش میں 26,000 ٹن پلاسٹک کا اتپادن ہوتا ہے، جس میں 10,000 ٹن سے زیادہ پلاسٹک کو بٹورا نہیں جاتا۔ یو این پریاورن ایجنسی کے کلین سیز کیمپین کے تحت سنچالت ٹائڈ ٹرنرز پلاسٹک چیلنج نامک اس ویشوک پہل کے ذریعے بہاؤ کو موڑنے والے یوواؤں کو پلاسٹک پردوشن کے بارے میں شکشت کیا جاتا ہے، ساتھ ہی انہیں پلاسٹک کے استعمال کے پرتی اپنے رویوں میں بدلاؤ لانے کے لیے پروتساہت کیا جاتا ہے۔ انہی بدلاؤں کو اپنے نجی جیون میں اپنانے کے بعد وہ پھر ان کا دائرہ بڑھا کر سمودایوں میں بھی پھیلا سکتے ہیں۔ 30 جون کو اس مہم میں شامل 1,900 یوواؤں نے بھارت میں ایک ورچوئل یووا سمیلن میں حصہ لیا، جس کے آیوجن کا ادیش پلاسٹک چیلنج کی سفلتاؤں کی جانکاری ساجھا کرنا تھا۔ سنیکت راشٹر شیکشک ویگیانک ایوم سانسکرتک سنگٹھن یونیسکو نے ترکی کے اس فیصلے پر گہرا کھید ویکت کیا ہے، جس میں کسی وچار ومرش کے بنا ہی پراچین آیا صوفیہ دھروہر کو مسجد میں تبدیل کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ غورطلب ہے کہ ترکی کے راشٹرپتی رچب طیب اردوان نے اس سلسلے میں شکروار کو ایک آدھکارک آدیش پر ہستاکشر کیے۔ اس سے پہلے یو این ایجنسی نے ترکی سے اپنے دائتووں کا نروہن کرنے اور آیا صوفیہ کا درجہ وشو دھروہر سوچی میں ایک سنگرہالے کے طور پر بنائے رکھنے کی اپیل کی تھی۔ کچھ اور جانکاری کے ساتھ سچن گوڑ۔
اس بہترین عمارت کو قریب 1,500 سال پہلے ایک بڑے گرجا گھر کے روپ میں ستھاپت کیا گیا اور وشو میں اسے بائزنٹائن عیسائی واستو شلپ کے اپرتیم ادھارن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اوٹومن سامراجیہ کے ابھار کے بعد اسے بعد میں ایک مسجد بنا دیا گیا، لیکن پھر ورش 1934 میں عمارت کو ایک دھرم نرپیکش سنگرہالے کا درجہ دیا گیا۔ نیوز رپورٹوں کے مطابق اس فیصلے کے بعد عمارت کا نینترن دیش کے دھارمک ندیشالے کو سونپ دیا جائے گا اور اسے مسجد کے طور پر کھولا جائے گا، جہاں نماز بھی ادا کی جا سکے گی۔ یونیسکو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی طرح کی تبدیلی کے لیے سمبندھت دیش سے سوچنا ملنا ضروری ہے اور آوشک ہونے پر وشو دھروہر سمیتی پڑتال بھی کر سکتی ہے۔ یونیسکو نے ترکی پرشاسن سے بنا دیری کے سنواد شروع کرنے کی اپیل کی ہے، تاکہ اس اسادھارن وراثت کے سارومک مولیہ پر ہونے والے نکاراتمک پربھاؤ کی تتکال روک تھام کی جا سکے۔
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को इजाजत दीजिए।